विष्णु लोक जय जगन्नाथ नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा आदि आदि कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्रीमान अरुण जी परिहार क्या क्या बोलते प्रहराज के प्रहलाद और प्रहलाद में क्या अंतर क्या है वही 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 प्रहलाद वही है कि कुछ और अंतर है
एक प्रहर का राजा
सिर्फ अरे अष्ट पहर का राजा बन जाओ भाई एक पहर का और आपका देवी क्या नाम बेटी सुनीता और अरुण जी प्रहराज एक प्रहर के राजा के घर पे एक पहर नहीं आधे पहर के सत्संग के लिए पहर में 3 घंटे होते हैं तो आधे पहर के सत्संग के लिए आप सब लोग आए हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस पहरराज परिवार का आभार प्रकट करते हैं कि अपने घर के दरवाजे हम सबके लिए हरि कथा के लिए खोले हैं, और सुंदर सीताराम लक्ष्मण और सीताराम जी लक्ष्मण हनुमान जी का दर्शन, ये दर्शन गृहस्थ के घर में परिवार को संगठित रखने के लिए बहुत अच्छा है। सारा परिवार संगठित है और परिवार में अप्स एंड डाउन सदा आती रहती हैं, और परिवार का जब उदाहरण देते हैं तो शंकर जी का परिवार का उदाहरण देते हैं। शंकर जी परम वैष्णव है, भागवत है, महादेव है, और उनकी उनका वाहन क्या है, नंदी बैल, और उनकी अर्धांगिनी प्रिय पार्वती का वाहन क्या है, शेर। घर में पार्किंग कैसे करेंगे, हैं? शेर एक तरफ और एक तरफ हो, नंदी बैल तो शेर खाएगा कि नहीं खाएगा नंदी को, हाँ समस्या है कि नहीं। और एक बेटा गणपति आएगा, क्या है उसका वाहन, मूषक, और शंकर जी के गले में क्या पड़ा है, अब मूषक भागेगा कि नहीं भागेगा। अब दूसरा बेटा आएगा, क्या नाम, कार्तिक केक से ऊपर चढ़ के आएगा, और जो शंकर जी के गले में सांप है वो भागेगा कि नहीं भागेगा। शंकर जी कहता है परिवार में ऐसा ही सब विपरीत परिस्थिति है, फिर भी अगर भगवान का शरण लिया जाए, कथा किया जाए, तो फिर समस्या नहीं रहेगी। इसलिए शंकर जी दो ही काम करते हैं, या तो भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे स्मरण करते हैं, हाथ में माला होती है, और या तो हरि कथा बताते हैं। दो ही काम करते हैं तब प्रेम से शांत रह सकते हैं, क्योंकि परिवार में जैसे बर्तन बजते हैं ऐसे सब कुछ होना संभव है। इसलिए उस परिवार के अंदर प्रेम से रहने के लिए केंद्र भगवान होना चाहिए। जनरली प्रेम का केंद्र भगवान जब होता है तब सब साथ रह सकते हैं, जब केंद्र प्रेम का कुछ और होता है तो वो समय के साथ बदल जाता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जैसे अभी इतनी सारी दुनिया में इन्वेंशन हो गई है, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, हाँ फिर जा गया, काय के लिए लेने की जरूरत पड़ गई, भाई इसका क्या काम क्या है, बोला 7 दिन की ला के रख देंगे, सब्जी खराब नहीं होगी, 7 दिन चल जाएगी, तो सब्जी खराब नहीं हो जाए इसलिए रेफ्रिजरेटर ले लिए। अच्छा खराब सब्जी अंदर रखोगी तो अच्छी हो जाएगी क्या, हाँ बिगड़ी हुई रखेंगे अच्छी नहीं होगी ना, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ रही कि हमने कुछ चीजें खराब होने से बचने के लिए कोई ना कोई साधन बना के रखा है। हरे कृष्ण, रेफ्रिजरेटर ले लिया, फ्रिज सब्जी खराब होने से बच जाएगी, और गेहूं खराब होने से बचने के लिए उसके अंदर कुछ चीज डाल देते हैं तो वो खराब होने से बच जाए। ऐसा भी कोई साइंस ने यंत्र बनाया है, विज्ञान ने, कि आदमी खराब होने से बच जाए, ऐसा कोई चीज है जिसमें डालें आदमी को खराब होने से बच जाए? हमारे ऋषियों ने कहा सत्संग ऐसा साधन है जिससे आदमी खराब होने से बचता नहीं है लेकिन खराब भी सुधर जाता है। ये डबल एक्शन वाला हमारा ऋषियों का ऐसा एक आविष्कार है सत्संग, सत्संग का सुधरिया भला, सत्संग में आदमी सुधर जाता है, बिगड़ा हुआ भी सुधरता है, बिगड़ा हुआ सुधर जाता है। और प्रभुपाद जी के सत्संग का प्रमाण तो विश्व भर में है कि बिगड़े हुए क्या हुए, हिप्पी जो घर छोड़ के माता पिता को तो तलांजी देकर छोड़ के, जो नशा करके और बिल्कुल आवारा हो गए थे, वो सत्संग किससे सुधर के साधु बन गए, पूरे विश्व के अंदर जो है वो कृष्ण भावना अमृत की स्थापना कर ली। तो सत्संग कितना बड़ा प्रभावशाली है। हम तो सामान्य कहते हैं सब परिवारों को कि जैसे एक जमाना था भाई, बच्चों को स्कूल में वैक्सीनेटर आता था, वैक्सीनेशन तो हम भाग जाते थे स्कूल से कि पता नहीं सुई मारेगा ना, डर लगता था। अब थोड़े समझदार हो गए थे, बच्चों को खुद ही ले जाते हैं, अपने आप ले जाके अस्पताल में टीके लगाते हैं, सुई लगा के आते हैं। अभी अवेयरनेस हो गई ना, तो इम्यूनाइजेशन की अवेयरनेस हो गई कि बच्चे को अगर नहीं लगाएंगे तो बीमार हो जाएगा। ऐसे एजुकेशन की जरूरत है कि ये सत्संग वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है असल में, क्योंकि माया का प्रभाव इतना भारी है चारों ओर से बच्चों के लिए, खास करके माया तो बड़े बड़े ऋषियों को ही प्रभावित करती है, बच्चा क्या बड़ी बात है। इसलिए ये सत्संग समाज के अंदर अति आवश्यक है। और सत्संग की परिभाषा है सत्य के साथ संग, और सत्य है भगवान। सत्य की ये सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं है, सत्य भगवान को कहते हैं। सत्य है भगवान, परम सत्य भगवान है। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत का पहला श्लोक है। हमारी बुद्धि परम सत्य का ग्रहण करे, हमारी बुद्धि में परम सत्य स्थापित हो, तो वो परम सत्य कौन है? भगवान है परम सत्य। ये स्वरूप लक्षण है भगवान की प्रार्थना का, सत्यम परम धीमहि। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य पहले ही शब्द आता है। तो सत्संग का मतलब भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का साधन। तो सत्संग में भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की लीला के द्वारा, भगवान के दर्शन के रूप के द्वारा, भगवान के दयालुता, पतित पावन, भक्त वत्सल, करुणा, दयामय, इन गुणों से हम प्रभावित होके भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। ये संबंध जो भगवान के साथ हमारा है, यही सत्संग का असल में उद्देश्य है कि हमारा सत जो भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है, जिसको हमने भुला दिया है, इसलिए संसार में हम भटक रहे। और संसार में हम बड़े प्रयास करने के बाद भी सुख के सौ साधन करते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा घूम फिर के आखिर में फ्रस्ट्रेशन, परेशानी और चिंता ही पले पड़ती है। ये सारे संसार का यही अनुभव है। और विश्वविजेता सिकंदर वो अंत समय कहने लगा कि सारी दुनिया को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तो पूरी दुनिया मिल जाए और अपनी आत्मा खो दे तो लाभ क्या हुआ। तो ये जो सत्संग की परिभाषा, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे 50 साल पहले, प्रभुपाद ने कहा तो अभी उसको कहना चाहिए 80-90 साल पहले। भारत इसलिए महान था कि हर समय हर गांव में सत्संग होता था। कोई ऐसा भारत का गांव नहीं है जिसमें रात को हरी कथा सुन के, राम कथा कहीं होती है तो कहीं भागवत हो रही है, तो ये तो प्राय गांव गांव में होता था। लोग शाम को, जो आज लोग टीवी पे बैठते हैं, ये लोग पहले कथा में जाके बैठते थे। ऐसा नहीं है कि समय में कोई परिवर्तन आया, हमारे पास समय नहीं है। वही 2-3 घंटे हमारे पास आज भी है, लेकिन आज हम उसके और टीवी के ऊपर बैठ के दुनिया की परेशानियां अपने दिमाग में डालते हैं। अब कहीं और आग लगी, हमारे घर में आग काय के लिए टीवी लगाए, हम घर में आग लगाते हैं, उस पर आई आग, उधर ये हो गया, उधर हो गया, आपको उससे क्या लेना देना। आपके अंदर में आग लगी है, उसको तो बुझा नहीं रहे, दुनिया की आग की चिंता कर रहे। तो एक महात्मा को मैं कहते सुना कि हर व्यक्ति सारा दिन परेशानी से काम करने के बाद घर आता है ना, तो सोचता है कल से अच्छा जिंदगी बिताने का प्रयास करूंगा, बहुत परेशानी है। लेकिन सुबह उठता है, जैसे ही न्यूज़पेपर आता है ना, तो लिखा मिलता है इसने चोरी की, इसने डाका डाला है, यहाँ एक, तो ये सब मैं अकेला थोड़ी हूँ, बहुत दुनिया सारी है। तो फिर वापस वही काम करना शुरू करना है। तो जो आदमी सुधरना भी चाहता है, उसको ये न्यूज़ जो सुधरने नहीं देती कि भर सभी ऐसे, मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो असल में इसने बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। अच्छी तरह से अगर देखेंगे, समय हमारे पास उतना ही है जितना पहले हमारे बड़े बुजुर्गों के पास था, लेकिन वो अपने समय का सदुपयोग करते थे, इसलिए संतुष्ट थे। न कुछ ज्यादा उनके पास धन धान्य, कोई व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं थी, लेकिन हृदय उनका अंदर में बहुत संतुष्ट था और शांति उनके पास थी। और हमारे पास समय उतना है, लेकिन हम दुनिया की देखभाल के पीछे पड़ते पड़ते, हमारे पास बहुत कुछ है फिर भी अंदर में खाली पड़ा है, कुछ नहीं, अभी कुछ कम रह गया। तो ये हमने एक जो भारत की महानता थी, महिमा थी भारत की, कि संतुष्ट, सेटिस्फाइड, कंटेंट कंट्री है, जिसको कहीं से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है। उसने पाश्चात्य संस्कृति का नकल करते 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 अब भारत को गरीब कंट्री माना जाता है कि यह भिखारी कंट्री है, वो तो थर्ड वर्ल्ड हो गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया का आध्यात्मिक दृष्टि से था, उसकी तुलना अब भौतिकता के स्तर पे किया तो भारत थर्ड वर्ल्ड हो गया। जो हमारा महाराज कहा करते थे कि भारत की वेल्थ आध्यात्मिकता है, दो श्लोक भगवद गीता के अगर आपको आते हो और आप दुनिया के किसी कोने में जाकर बैठो और हरि कथा कीर्तन करो तो आपको लोग सेवा करेंगे, पूजेंगे और आपका इतना सम्मान होगा कि लाखों लोग लख लखपति आपके चरणों में बैठे होंगे। ये धन है असल में आपका, और उस असली धन को तो हमने छोड़ दिया और हम फिर वो झूठे धन के पीछे पड़े हैं, उसमें कभी पेट भरने वाला है नहीं। तो असल में हमारा जो धन था, भारत कैसा कहे कि भारत जो है गरीब देश है, एक हम पहले उदाहरण पढ़ा था, कभी सुना होगा आपने, हमने दिया भी होगा। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर एक पुराने पेटी के ऊपर बैठ के भीख मांगता था, भाई रुपया दे दो, भाई रुपया दे दो। तो कुछ लोग देखे जाते थे, लेकिन एक समझदार आदमी ने कहा, ये जो पेटी के ऊपर जो आप बैठे हो बाबा जी, ये पेटी इतनी पुरानी एंटिक है कि इस पेटी की कीमत ही लाखों रुपये है, इसके ऊपर बैठ के तुम रुपया रुपया मांग रहे हो। ये पुरानी पेटी जो है ये तो ओल्ड कार्विंग वुड की, ये तो हमारे दादा के जमाने की, इसको ताला ऐसे ही लगा हुआ है, बाप भी ऐसे कर रहा था, मैं ही ऐसे कर रहा हूं। अरे भाई, इस पेटी को कभी खोल के देखा है? पेटी अपने आप पेटी एंटीक है, लाखों की है, लेकिन इसके अंदर क्या है कभी खोला है? बोला क्या करूं खोल के, दादा बाबा ने ऐसे कहा, हम ऐसे कर रहे हैं। उसने कहा आप नीचे उतरो, रोज का कितना मिल जाता है? भाई 5-7 रुपया मिल जाते हैं, 10 रुपये। और पेटी का ताला खोल के अंदर देखें तो हीरा मोती जोहर भरे पड़े हैं। अब बेमूर्ख को पेटी खोलने आया नहीं, कभी खोला नहीं, ऊपर बैठ के भीख मांग रहे। हमारा हाल है ये, हमारा हाल है ये। असल में हमारा जो धरोवर है, प्रभुपाद ने ये एक स्थापना करके दिखाया कि मैं अकेला वृद्ध 50-70 साल का इस भागवत के संदेश को लेके, भागवत धर्म के गीता के संदेश को ले गए, पूरी दुनिया इसको, दुनिया ने स्वीकार किया, और ऐसे 5-7 और निकल आते तो हम पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को। प्रभुपाद ने उस वक्त शब्द बनाया, कहा जो था वो कहा था, जो पहले जैसे कहते थे भारतवर्ष है, ये पूरा विश्व भारतवर्ष जैसे था ऐसे हो जाए, लेकिन ये किसी को अपने अंदर में पड़े हुए। इसलिए महाप्रभु का ये श्लोक हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे, भारत भूमि तिहाइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पर उपकार। सौभाग्य है कि भारत की भूमि में जन्म मिला। देवता भारत की भूमि के जन्म की इतनी प्रशंसा करते हैं, और उस प्रशंसा में ये श्लोक देवताओं का बहुत बड़ा प्रसिद्ध, पांचवें स्कंद का, न यत्र वेकुंठ सुधा अपगा कथा अपगा, न यत्र वेकुंठ कथा सुधा अपगा। जहां भगवान वेकुंठनाथ भगवान विष्णु को कहते हैं, वेकुंठ शब्द का अर्थ है जहां कोई चिंता ना हो, परेशानी ना हो, जहां सभी प्रेम से आपस में रहते हों, उसको वेकुंठ कहते हैं। जहां वेकुंठ मतलब भगवान की हरि कथा न, हरि कथा को कहा है सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। जहां हरि कथा के अमृत रूपी गंगा नहम बहती हो, नयत्र साधवो तदाश्रयाः, और उस कथा के किनारों पे साधु बैठ के हरि कथा का कीर्तन श्रवण न करते हों, नयत्र यज्ञ मखा महोत्सवाः, और जहां हरिनाम संकीर्तना का यज्ञ न होता हो, जहां जन्माष्टमी रामनामी भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का उत्सव न होता हो, उत्सव है ये सब उत्सव आ जाते हैं, गौर पूर्णिमा सुरा पिलो का, वो अगर स्वर्ग लोक भी हो, वो अगर वैभव वाला स्वर्ग लोक भी हो, न सेवे ये, तो वो हमको नहीं चाहिए। ये देवता स्वर्ग लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमने कोई पुण्य कार्य किया होगा तब तो हमको देवता का जोन मिला है, देवता का पद मिला है, ये तो ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है देवता का पद, कुछ पुण्य किया होगा तब ना, तो इसका मतलब पुण्य कुछ तो हमारे पूरे हो गए उस पद लेने में, अगर कुछ बचे हैं तो हमको भारत में मानव का जन्म दे देना, क्योंकि भारत में हरि कथा होती है, हरि सब हरि भक्त मिलते हैं, और हरि नाम कीर्तन होता है, और हरि के उत्सव मनाए जाते हैं। तो ऐसा सौभाग्य जहां है हमको, तो अब अगर हम यहां आए हैं तो हमको ये भारत की महिमा को यहां अपने घरों में, पहले जन्म सार्थक का अर्थ है अपने आप को पहले समझ ले, उसको पहले अपने आप के आपको परिपूर्ण कर ले। सार्थक जन्म, सार्थक चेतना महाप्रभु ने जब कहा है भगवद गीता में, जब ये श्लोक आता है यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव त्रोजना यत प्रमाणम कुरुते मनुष्य अनुवर्तते, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है और जैसा प्रमाण स्थापित करता है सामान्य व्यक्ति उसके पीछे चलता है। इस श्लोक के बाद क्या श्लोक आता है, भगवान कहते हैं मेरे को कुछ करने के लिए नहीं है और मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं धरती के ऊपर अवतार लेता हूं तो सब मर्यादा के कार्य करता हूं क्योंकि मैं उदाहरण बनना चाहता हूं। तो उदाहरण कौन है, भगवान स्वयं है। आज जब श्रेष्ठ की जब बात आई तो भगवान ने श्रेष्ठ की जगह पर स्वयं को खड़ा करके अपना उदाहरण दिया। अगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जन्म सार्थक करी, तो चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों के साथ अपने अंतरंग भक्तों के साथ एक वर्ष तक तो सारी रात स्वयं ही श्रीवास आंगन में कीर्तन किया। यह हुआ अपने आप को परिपूर्ण रूप से भगवत प्रेम से भर दिया, और जो उससे छलक के बाहर निकलता वो परोपकार के लिए लोगों को दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरों को प्रचार किया और स्वयं नहीं लिया, नहीं, पहले स्वयं एक वर्ष तक रात को दरवाजा बंद करके कोई अंदर नहीं आता था परोपकार की। जन्म सार्थक का अर्थ यह है कि स्वयं अपने आप में संग, अकेले नहीं, ये दूसरा ये बहुत बड़ा कलयुग है ना, वैसे अकेला तब ध्यान अकेले को करना होता है, लेकिन महाप्रभु का ध्यान अकेला नहीं था, वो पूरा जो अंतरंग भक्तों का संघ था उनके साथ सारी रात कीर्तन होता था। वो सूर्य उगता था तब कीर्तन समाप्त होता था। तो ये जो जन्म सार्थक की, फिर संकीर्तन शुरू किया, फिर परोपकार का कार्य शुरू किया। तो महाप्रभु ने पहले स्वयं जन्म सार्थक का अभ्यास करके और फिर परोपकार का कार्य किया। तो ऐसे हमको भी सत्संग का एक आदत ऐसी पड़नी चाहिए जैसे भोजन की आदत पड़ी हुई है कि भाई सुबह नाश्ता करते हैं तब बाहर काम पे जाते हैं, दोपहर का लंच बॉक्स अपना साथ ले जाते हैं और शाम को घर आके पहले भोजन का पूछते। ऐसे सुबह तो घर से एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ के निकलना चाहिए, एक माला भगवान के नाम की जप के निकलना चाहिए ना भाई। अपना घर से नाश्ता तो करना चाहिए, शरीर का नाश्ता तो कर लेते हैं कि पराठा भी खा लेते हैं तो ढोकला भी खा लेते हैं, पूरी भी खा लेते हैं तो ब्रेड, लेकिन स्पिरिचुअल नाश्ता कर नहीं जा पाते हैं तो बहुत बड़ी एंग्जाइटी में सारा दिन गुजरता है, क्योंकि पहले सुबह ही पीसफुल कब, सुबह ही दवाई नहीं खाई पीस की तो सारा दिन पीस पीस पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, थक जाते हैं। और दोपहर को लंच बॉक्स जैसे ले जाते हैं, एक घंटा लंच का आपको छुट्टी मिलता है ना, एक 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 घंटा तो होगा ना लंच ब्रेक, अब खाने में एक घंटा तो नहीं लगता है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां हमारा सत्संग का टाइम है 1 से 2 लंच ओवर, वो सबका लंच ब्रेक होता है। एक जगह है जहां सब आते हैं और हम 40 मिनट सत्संग करते हैं और 20 मिनट में प्रसाद मंदिर से आता है, उनको वही प्रसाद खिला के वापस जाके काम करो। तो लंच ब्रेक में हमने एम्स में रेगुलर सत्संग का प्रोग्राम चलाया था, वैसे वीकली होता है। एक बार मैं अस्पताल में था तो रोज 15 दिन में सत्संग किया, पूरी राम कथा उनको बताई, 15 रोज 45 मिनट कथा करनी, और फिर अपने आप उनको लगा कि अब घर से काय के लिए लाए, मंदिर से आता है तो मंदिर से सब लोग, उसने बोला आज हमारा प्रसाद, आज हमारा प्रसाद, वो एक कल्चर बन गया वहां। तो ये लंच आवर में भी भोजन के साथ उनको भजन मिल गया, तो वो क्या है वापस जाके हम उनको कहते देखो इतने आदमी दुखी आते हैं यहाँ, कितने आदमी दुखी आते हैं अस्पताल में, अब तुम ही सुखी नहीं होगे तो उनको सुख कहां से दोगे, तुम ही परेशान होगे उनका इलाज करते तुम परेशान हो जाओगे। अब यहां कथा सुन के जाते हैं कि भाई हमको सेवा करनी है, तो उधर जाके उनका मन करता है अरे बेचारे दुखी है इनका दुख दूर करें। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा, उनको हमने ये सिखाया कि अस्पताल में तो सब दुखी आते हैं, परेशान आते हैं। अब परेशान दुखी आते हैं तो वो सुखी होने के लिए आते हैं ना, दुख मिट जाए इसके लिए आते हैं ना। अब आपके पास सुख है कि आप उनको दोगे? अगर आप ही सुखी नहीं हो, आप ही परेशान हो, तो फिर आप दूसरे को कहां से सुखी करोगे? तो पहले अपने आप को तो सुखी कर लो ना। संसार में जो आप पढ़ के आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आपने प्रोफेशन अपना लिया, इसमें आपको सक्सेस मिली है, आप सक्सेसफुल हो जीवन में। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? आप सक्सेस को क्या कहेंगे हिंदी में? सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन क्या शांति प्राप्त हुई है? क्या सफलता प्राप्त हुई है लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई है, यह सत्य है कि नहीं? आप ये पहले एक इक्वेशन को ठीक करो। सफलता मिली है लेकिन शांति नहीं मिली। और भगवत गीता का श्लोक क्या कहता है? अशांतस्य कुतः सुखम। अगर शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा? अगर शांति नहीं है तो सुख आएगा कहां से? सुख तो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है शांति। और शांति कैसे आती है? तब कहते हैं जब मन एकाग्र नहीं है तो शांति कैसे आएगी? और बोला मन एकाग्र कैसे होला? बोला भगवान से युक्त नहीं है तो अयप्तस्य का भावना। अगर भगवान से जुड़े हुए ही नहीं है तो मन कैसे एकाग्र होगा? और मन एकाग्र नहीं है तो शांति नहीं है, शांति नहीं है तो सुख नहीं है। तो सफलता आपकी एजुकेशन दिलाती है, लेकिन शांति का साधन सत्संग देता है। तो दोनों को साथ में कैसे रखना चाहिए? प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे कि नदी को पार करना हो, लंगड़ा और अंधा दोनों हो साथ में, तो लंगड़ा चल नहीं सकता है, अंधा देख नहीं सकता है, दोनों अपने आप अकेले पार नहीं कर सकते। अंधे के कंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ जाए तो लंगड़ा रास्ता दिखाएगा, अंधे में चलने की ताकत है, दोनों पार कर जाएंगे। तो भौतिकता की जो सफलता है वो अंधापन है, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता। और वैसे भी जब ज्यादा सफलता मिलता है तो आदमी अंधा होता जाता है। इसको शब्द भी नारद ने कहा है, धन मद अंध। मद का मतलब नशा और अंध का मतलब जिसमें मर्यादाओं की ओर नजर न जाए। ये नशा अंधा कर देता है। ये तो कभी आपको बताया होगा शायद, सभी भगवान नारायण कहते हैं मेरी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी कहती है आप हमारे पति हैं, आपको प्रणाम है, लेकिन आपकी पूजा नहीं कर रहे, ये सब मेरी पूजा कर रहे हैं, ये सब मेरे को चाह रहे हैं। तो कहा नारायण जी, कहा अगर वो मेरे को और आपको साथ चाहेंगे तो फिर गरुड़ के ऊपर हम चढ़ के चलेंगे, तो उसके घर में जो लक्ष्मी आएगी वो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आएगी, और गरुड़ के पंखों से भगवान के वेद की धुनियों का उच्चारण होता रहता है। इसका मतलब धर्म की लक्ष्मी आएगी, जिसके लिए गीता के 6 अध्याय में श्लोक आया है, सुची नाम श्रीमताम गेहे। सुची नाम श्रीमताम, दो शब्द है। सिर्फ श्रीमतान का होता ना तो बड़ा अनर्थ हो जाता। बड़े बड़े माफिया वाले भी श्रीमतान है, धन तो बहुत है उनके पास, वैशा के पास भी धन बहुत पड़ा है। वो आगे सुची नाम लगा के भगवान ने पवित्र धन, धार्मिक धन, लेकिन सुची नाम आगे लगा दिया। सुची नाम नहीं लगाया होता तो कोई भी धनी जो है वो महान माना जाता नहीं। पवित्र धन, धार्मिक धन, वो लक्ष्मी जो नारायण के संग में आती है वो गरुड़ के ऊपर आती है, वो शांति लाती है, सुख लाती है, समृद्धि लाती है। जब लक्ष्मी अकेली को पकड़ने का प्रयास करते हैं और नारायण को भुला देते हैं, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी पति है उसको याद नहीं करते, तब लक्ष्मी का वाहन कौन सा होता है? उल्लू। उस लक्ष्मी का वाहन है आउल, उल्लू। और जहां वो लक्ष्मी आती है उनको अंधा कर देती है, जैसे उल्लू अंधा होता है, वो अंधा कर देती है। तो ये शब्द अंधा जो आया है, धन मद अंधा, तो इसलिए आवश्यकता ये है, बात कथा कहां से आई थी कि धन सफलता मिलती है तो शांति नहीं मिलती है। शांति क्यों नहीं मिलती है कि शांति का साधन उसमें नहीं है, तो बैलेंस होना चाहिए। बात ये कर रहे थे अंधे और मंडे का, जो लंगड़े की बात कर रहे थे, उसका भाव ये था कि धन हमारे को आने से अंधा न करे, इसलिए कम से कम लंगड़े का मतलब है अध्यात्म का लूली लंगड़ी तो कुछ होनी चाहिए कम से कम, ऐसा थोड़ा बहुत तो घर में, जैसे बंदर घर में एक रखना चाहिए, थोड़ा निशान भगवान का जगह बनी होनी चाहिए, आते जाते देखेगा, दीप जलना चाहिए घर में रोज का, अगरबत्ती घर में होनी चाहिए, आध्यात्मिक एक वातावरण थोड़ा हो तो इससे इससे प्रभाव क्या पड़ता है, मैं कितना भी सफल हो जाऊं लेकिन फिर भी स्वामी तो भगवान है, सफलता देने वाला ये है, तो उसमें ये है कि अहंकार आएगा नहीं, क्रेडिट भगवान को जाएगा, भगवान आपने कृपा कर दी, ये भगवान आपकी कृपा से सब हो गया। तो सत्संग हमारे को भगवान से जोड़ता है, और ये भगवान से हमारा जुड़ना हमारे को शांति देता है, और हमारे अंदर जो जिसको कहते हैं प्रतिभा है, हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं, वो हमारे को सफलता देते हैं, और सत्संग हमारे को शांति और सुख देता है। इसलिए इन दोनों की जीवन में आवश्यकता है। किसी एक को पकड़, किसी एक को आज सुबह एक बात कर रहे थे जहां बैठे थे हीरा भाई के घर में, अच्छे से समझदार बिजनेसमैन लोग थे, तो हम अपने अनुभव की कसौटी पे बात कर रहे थे। आजकल लोग सत्संग अथवा धार्मिक साधन से दूर क्यों होते जा रहे, अतः क्यों हुए हैं, जो हमारा मानना है वो ये है कि धर्म के प्रचार करने वाले वो तो हैं सब साधु सन्यासी, उनको तो ना बच्चे हैं, ना घर है, ना दुकान है, ना धंधा है, और वो कथा करते हैं कि सब दुनिया छोड़ को, और आइए हम हैं 99% जनता तो है कारोबार करने वाली, बच्चे पालने वाली, तो वो कहते ये बाबा जी का सत्संग नहीं सुनने का, ये तो हमारा सब धंधा चौपट हो जाएगा। तो समस्या क्या हुई कि प्रचार करने वाले निवृत्ति मार्ग के हैं और श्रोता जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए तालमेल बैठ नहीं रहा, इसलिए लोग परेशान हो गए, सत्संग ने लोगों को परेशान कर दिया। ये सत्य मैं कह रहा हूं, अब हम हमारे इंटरनल भी देखते हैं, तो वो ब्रह्मचारी प्रचार करेगा तो वो मंदिर के रूल अप्लाई करेगा, और हमारे घर में तो वो रूल नहीं चल पाएंगे ना, हमारे घर की व्यवस्था दूसरी है, मंदिर की व्यवस्था दूसरी है। तो ये हमारा एनालिसिस है कि लोगों का धर्म से दूर होने का कारण है कि सारे बड़े बड़े महात्मा साधु हुई, ये महामंडलेश्वर सत्संग कर रहा है, वो महामंडलेश्वर अब इतने परेशान हो गए थे, कोई एक बच्चा है चेला तो बन नहीं पाएगा, अब वो कथा किसको सुनाए, अब तो इसलिए लोग बहुत बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए जब भगवान ही पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में गए तो सारे गुरु भगवान के हैं, वो ग्रस्त हैं, वशिष्ठ जी ग्रस्त है, अरुंधति घर में है, सांदीपनी के घर में उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, तो भगवान ने ये वहां प्रवृत्ति मार्ग के पास शिक्षा क्यों नहीं जाके ली कि जब गृहस्त आश्रम में प्रवेश करना है तो उसकी शिक्षा की पद्धति दूसरी होती, तो मार्ग दो है प्रवृत्ति, लेकिन वो प्रभुपाद जी ने मठ नहीं कहा, पहले हमारी परंपरा में है गोड़िया मठ, और मठ में केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं और कोई नहीं रहता है, मठ उसको कहते हैं मॉनेस्ट्री, भाई मॉनेस्ट्री में कौन है जो 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 रिनाउंस है वो लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको सोसाइटी बनानी है, सोसाइटी का मतलब है सारे वर्गों को साथ ले चलना है, और जो सबके लिए आध्यात्मिकता उसके जीवन में इतने, यहां तक प्रभुपाद जी भागवत के परपट में लिखा है कि भागवत का सत्संग मंदिर में भले 8 बजे हो लेकिन ग्रस्त माताओं को समय मिलेगा शाम को 3 और 5 के बीच में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, अभी काम से पति आए नहीं है, पुरुष वो टाइम उनके पास ब्रेक का है, उनका सत्संग उस टाइम होना चाहिए, इतना प्रैक्टिकल प्रभुपाद की अप्रोच है। आज तक दुनिया के अंदर किसी भी मंदिर में रेस्टोरेंट नहीं बाहर खोलते हैं, प्रभुपाद ने गोविंद रेस्टोरेंट मंदिर में बोलो खोलो। ये क्यों प्रभुपाद? बोला लोग मंदिर में आने की आदत से दूर भाग गए, लेकिन अच्छा भोजन मिलेगा वहां तो जाएंगे ना खाने को। अब भोजन के लिए आएंगे तो मंदिर में आएंगे तो पुराने संस्कार इनको कहेंगे अरे आए हैं मंदिर तक तो दर्शन तो कर ले। तो ऐसे उनको दर्शन की आदत पड़ जाएगी, अज्ञात सुकृति मिल जाएगी, और फिर हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद जो खाएंगे तो उनके संस्कार वापस लौट के आएंगे। भाई गेस्ट हाउस बना दो, खाई खाई के लिए बना दो। भाई रहना तो कहीं चाहते हैं ना भाई, और कहीं रहेंगे, मंदिर में रहेंगे तो वातावरण सात्विक मिलेगा ना। तो प्रभुपाद ने एक कल्चर ऐसा दिया है भागवत धर्म जो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों वाले उसमें चल सकते, उसमें गृहस्थ के लिए भी उतना ही स्कोप है जितना एक ब्रह्मचारी के लिए स्कोप है। और ऐसा ऐसा एक उन्होंने कल्चर दिया है। एक और कहीं क्या होता है, प्रचार में केवल फिलासफी धारते हैं, तुम ब्रह्म हो, तुम जगत झूठ है, तो फिर जगत झूठ है तो फिर। एक महात्मा को मैंने कहते सुना, अरे भाई आप सब लोग दुखी इसलिए हो, संसार के अंदर आपको दुकान परेशानी करता है, आपका घर परेशानी है, आपका ये परेशानी है। सबने कहा हाँ गुरु जी, बोलो मेरे को दे दो, आप जाओ भगवान। उसका कहने का अर्थ ये था, ये साधु हमारी समस्याओं को तो समझते नहीं है, वो तो कहते सब दुनिया छोड़ दो, ब्रह्म तो अभी वो तो। ये फिर महाराज आप ब्रह्म बन गए हो। आज मैं अभी आने से पहले थोड़ा एक देख रहा था, एक बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित, सारे शास्त्र पढ़ लिए, मेरे से कोई भी प्रश्न पूछे, एक छोटे बच्चे ने मुट्ठी भर के रेती पकड़ ली, बोला महाराज इसमें दाने कितने बताओ। अब वो दाने कहां से बताएगा, महाराज का दिमाग हिलने लगा, ये क्या पूछ रहा है, बोले इसका उत्तर तो दो महाराज, तुम कहते मुझे सब आता है। तो सारा संसार की बातें समझ लो और भगवान के बारे में जाना नहीं तो मुट्ठी भर धूड़ी है हाथ में, कुछ गिनती तो कर नहीं पाओगे। तो ये समस्या हमारी ये है कि आध्यात्मिकता को इतना एक, अब दो भारत के अध्यात्मिक का एक तो चलती है ऐसी कट्टरपने वाली अध्यात्मा जो लोग भाग जाते हैं, और दूसरी इतनी रोचक और रोमांचक हो गई है कि उसमें आध्यात्मिकता गुम हो गई और नाचना कूदना शुरू हो गई, वो गाना बजाना ऐसा हो गया कि वो जैसे एक प्रोफेशन हो गया, तो जो असल चीज थी बीच में से वो गुम हो गई। इसलिए भागवत के महात्म में लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसा हो गया, भागवत के महात्म में लिखा है कि वक्ता अगर है कृष्ण अर्थी, वक्ता का मन है कृष्ण में, और श्रोता है धन अर्थी, वो पाठ इस भागवत कथा इसलिए रखा रहा है कि हमारा धंधा चले। अब महाराज कृष्ण अर्थी बोलता भाई कृष्ण का भजन करना चाहिए, ये संसार तो नाशवंत है, वो कहते महाराज नाशवंत नहीं, मेरे को तो बढ़ाने की बात करनी है। तो वो श्रोता और वक्ता अगर एक जैसे नहीं है तो न रस उसको मिलेगा न रस उसको मिलेगा। और वक्ता कोई धन अर्थी आया ही कथा इसलिए करने है कि पैसा कितना मिलेगा, और सुनने कोई आया है भगवान की कथा तो बार बार कहेगा अरे भाई कुछ तो भेटा रख के जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो। तो बेचारा कोई साधु बोलता मेरे पास तो कुछ है नहीं, यहां आया हूं मैं क्या करूंगा, तो वो उठ के चला जाएगा आस्ते आस्ते। तो ये भागवत के श्रोता वक्ता का स्कंद पुराण में जहां महात्म में बताया है कि वक्ता और श्रोता अगर मैच करेंगे तो दोनों को सुख मिलेगा। लेकिन हमारे पास वक्ता अगर वृक्त सन्यासी है और श्रोता ग्रस्त है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जो वो बोल रहा है, क्योंकि वो उसके दिनचर्या में चल नहीं पाएगा। आपको 4 बजे 4:30 बजे आना ही है मंदिर में मंगल आरती में, अरे बच्चे उठा के स्कूल कौन भेजेगा महाराज, उनका टिफिन कौन बनाएगा। प्रैक्टिकल बोलो ना, प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल ग्रस्तों को कहा अगर आप मंदिर के पास रहते हो तो दर्शन आरती में दर्शन करके अपने काम पे जाया करो। ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद वाज सो प्रैक्टिकल। वो इसलिए प्रैक्टिकल था कि उन्होंने दोनों कल्चरों को देखा था, पूरा एक जीवन भर का एक्सपीरियंस था, सिर्फ शब्दों का प्रचार नहीं किया है, कल्चर दिया है, वो कपड़ा पहनने से लेके भोजन खाने की शिक्षा दी है। तो एक सोसाइटी का मतलब है समाज बनाया है। पहले तो प्रभुपाद ने जब इंडिया में पहले शुरू किया था उसका नाम ही रखा था भक्त समाज, हाँ लीग ऑफ डिवोटीज, समाज है। तो असल में सब चल सकते हैं, ऐसा वातावरण आध्यात्मिकता का होना चाहिए, ऐसा सत्संग होना चाहिए जिसमें सबको लगे कि मेरे लिए इसमें कुछ है, इसमें मुझे लाभ मिल रहा है। बच्चों के लिए भी होना चाहिए, देवियों के लिए भी होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, वृद्धों के लिए भी होना चाहिए। ये जो प्रभुपाद जी ने लिखी पांच बातें हैं भागवत में तात्पर्य में, कि जिस समाज में बच्चों की शिक्षा का सुचारू व्यवहार न हो, व्यवस्था न हो, तो भविष्य में अच्छे आदमी कहां से लाओगे। बच्चों की शिक्षा की आज बड़े से बड़ी बात जो डिस्कशन हुई उधर गुजरातियों के बीच में, कि हमारे बच्चे हमने यहां से भेजे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, लेकिन भेजे किसी भाई कॉन्वेंट क्रिश्चियन में, 3 साल के बाद उस बच्ची को हमारे घर के संस्कार दोबारा सिखाने को 3 साल उधर गए, तो 2 साल उधर दोबारा उसको समझाने में लगे, वो इतना बिगड़ के संस्कार उसके बिगड़ गए, किताबी नॉलेज तो आया लेकिन संस्कार सारे बिगड़ गए। तो अपने क्यों नहीं हम यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल सकते, इतना सारा है तो अपना क्यों नहीं खोल सकते, अपना एजुकेशन का सिस्टम क्यों नहीं। तब हमने लगा कि एजुकेशन का सिस्टम हमारा विध्वंस जो किया था ब्रिटिश ने, उसको वापस हमने रिवाइव कभी किया ही नहीं, उसी को रिपेयर कर रहे, उसी को पैच वर्क कर रहे, उसको कभी हमने चेंज किया ही नहीं। ये हमारे से बड़े से बड़ा विडंबना है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। सो प्रभुपाद का पहला है कि बच्चों की अगर सुचारू शिक्षा का आपने संरक्षण नहीं किया, तो भविष्य में आप अच्छे आदमी एस्पेक्ट कैसे करोगे। वो बच्चे ही तो कल के बड़े आदमी बनने वाले हैं ना, और सारा समाज परेशान है आज। अपने बच्चे जो हम बाहर पढ़ा रहे हैं खर्चा करके, वो बच्चे एक भी बच्चा अपने पेरेंट की देखभाल नहीं कर रहा है। ये झूठ है कि सच है, पूरी दुनिया का देख लो, आप अपनी ओर भी देख लो, ठीक तरह देख लो, सच ये सत्य है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और हमको भी इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा तब हमको इसका एहसास होगा। तो ये एजुकेशन है नहीं ऐसी जो आपको सिखाए कि आप एक परिवार हो, ये तो इंडिविजुअल एजुकेशन है, सेल्फिश, तुम कहां से दूसरों से एक्सप्लॉइट करके अपने आप को कैसा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का डेफिनेशन ये है कि दूसरे का गला काटना, भाई तभी तो कॉर्पोरेट चलेगा, नहीं चलेगा कहां से। हम कोऑपरेटिव वर्ड था, अभी वो कॉर्पोरेट हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। कोऑपरेशन एक जो जो सहयोग होता था समाज के अंदर, वो समाप्त हो गया। एक किसी के घर में कोई दुख होता था तो पूरा गांव इकट्ठा होकर उसका सहायता करता था, ये हमारा समाज था। किसी के घर में हमारे कोई भगवान, मृत्यु सब घर में होती है, सर्वत्र मृत्यु है वैसे, तो घर वालों को पता नहीं लगता था, पूरा गांव सब अपने आप, कोई भोजन कहां बन रहा है कुछ मालूम तक नहीं होता था। अब आदमी को कितना परेशान होना पड़ रहा है, आज को आदमी परेशान है बहुत बड़ा। तो ये संस्कार चले गए, तो पहले बच्चों की एजुकेशन का हमारा, हम कभी सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए अब और कोई करेगा, अरे आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे, आप अभी तक सोचो इसको, आप एस्केप मत करो। एजुकेशन के लिए कोई योजना बनाओ जो कि फ्यूचर में आपके आने वाली पीढ़ी से, भाई अब 100 साल का दृष्टिकोण रखो। और दूसरा सीधा लिखा है प्रभुपद ने, जहां मातृशक्ति का, जहां नारी का सम्मान और सुरक्षा और संरक्षण नहीं होगा, तो अच्छे बच्चों का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण संभव नहीं है। और ये एक सबसे बड़ा समस्या है। अभी हम आपसे आने से पहले एक हमारे पास बैठा था कि भाई दुनिया भर में परिवार अभी कहीं कोई 50 साल तक किसी का चल रहा है, तो 90% भारत में एग्जाम्पल मिलेंगे, तो 2% वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलेंगे कोई परिवार 25 साल साथ रहा हो, नहीं मिलेगा। और सिंगल पेरेंट के चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं दुनिया भर में, वो की माताएं कहां कैसे संभालें बच्चों को। तो रशिया में देखते हैं होती हैं आके कि वो बच्चा तो हमारे गले पड़ गया, पति तो चला गया कहीं और शादी करके, अब हम बच्चा कैसे पालें, अपने को कैसे पालें। रोते हम तो ऐसे सैकड़ों की बात कर रहे हैं, एक दो को नहीं कर रहे, तो वो स्त्रियां बेचारी क्या करेंगी। तो स्त्री के संरक्षण का, उसके मान सम्मान का व्यवस्था जिस समाज में नहीं है, वो समाज नाश की तरफ जा रहा है। और तीसरा प्रभुपद ने कहा सीनियर सिटीजन, अगर उनको सुख पूर्वक सब सुविधाएं दी जाएं कि उनको चिंता कोई ना हो और अपने वो भविष्य को सुधारें, भगवान को याद करें और भगवान के धाम जाएं, उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबको एक दिन बूढ़ा तो होना ही है कि नहीं होना है, तो हमारे लिए हमने इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया के जो लोगों को परेशानी किया है, मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरी बुढ़ापे में सिक्योरिटी क्या है, ये हमारा सबसे बड़ी समस्या है। हमारी सिक्योरिटी क्या है, ये हमारी बड़ी समस्या है। और कभी ऐसा समस्या भारतीय संस्कृति में थी नहीं, लेकिन आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि सीनियर सिटीजन 50 साल तक काम करके वो काम करता है, आखिर में बेचारे को घर अपने में भी जगह नहीं मिलती, रोटी खिलाने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, अब ये तीनों को करे कौन काम, जो तीनों को काम करने वाला है वो है एक्चुअली ब्राह्मणिकल कल्चर। वो ब्राह्मणिकल कल्चर जो ये शिक्षा देता है, बच्चों को शिक्षा देता है, नारी को संस्कार सिखाता है, वृद्धों को शांति का रास्ता बताता है, तो वो ब्राह्मणिकल कल्चर समाप्त हो रहा है। इस कल्चर का कहीं सम्मान नहीं रह गया। अच्छे खासे, वो कहते अच्छे खासे ब्राह्मण, अब वो बेचारे, अब उनका कोई सम्मान नहीं है, इसलिए वो अपने अपने ब्राह्मणिकल कल्चर को ही तिलांजलि दे चुके, अब मार्गदर्शन करे कौन। तो ये चार मुख्य अंग के बाद पांचवी चीज प्रभुपाद जी ने वहां लिखी है, वो तो लिखी है गौरक्षा की बात, कि जिस संस्कृति में हमारी इकोनॉमी, जो भारत की प्राचीन इकोनॉमी वैदिक है, वो तो है पशु और भूमि, भूमि और पशु, ये हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी। अचल इकोनॉमी भूमि है और चल इकोनॉमी पशु है, और हम ना अभी किसी के पास भूमि है और ना किसी के पास पशु है, और जो ना धरती से जुड़ा है और जो गाय से नहीं जुड़ा है, वो भगवान से जुड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के लिए भगवान की प्रार्थना की जरूरत, धरती के लिए प्रसाद चाहिए और गाय के लिए घास चाहिए, तो भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत है। अब हमारे को तो दूध बाटल में मिलता है, तो काय के लिए भगवान को प्रार्थना करें, अभी तो बाटल को प्रार्थना है, बाटलों के दुकान खुल रहे हैं, मंदिर नहीं खुल रहे। ये तो कल्चर हमारा बिगड़ रहा है। तो ये पांच चीजें जिस समाज में सुरक्षित नहीं है, वो समाज विनाश की ओर जा रहा है, ऐसा ये चैलेंज है समाज का। और प्रभुपाद जी बहुत बड़ी उम्र में, सभी जानते हैं 70 साल में गए, लेकिन उन्होंने पहला काम इस्कॉन सोसाइटी में क्या किया, बोला गौशाला खोल दो न्यू वृंदावन में, गायों का रक्षा करो, एक गुरुकुल खोलो बच्चों के लिए, दो काम तत्काल से 66 में। आज के दिन, आज प्रभुपाद के अमेरिका में पहुंचने का दिन है, वो 17 सितंबर है वैसे, लेकिन वो तिथि के हिसाब से आज प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे थे, और अमेरिका में आज प्रभुपाद पहुंचे थे एक दृष्टि से, इसके कृष्ण भावना का उन्होंने बीज आज उधर पहुंचा था। तो उन्होंने पहले ये दो काम किए, और उनका अभी हम पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मायापुर वृंदावन के अंदर जितने भक्त सेवा कर रहे हैं, सेवा निवृत्त हो जाएं तो उनके लिए वहां सुविधाजनक व्यवस्था होनी चाहिए, वो अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, वो होना चाहिए। ये तीन काम तो उन्होंने, और पहले ये महात्मा हैं जिन्होंने वेस्टर्न पाश्चात्य देशों की संस्कृति में लड़कियां तो घूम रही है, लड़कियों का आश्रम बनाया जो कहीं वैदिक संस्कृति में नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने संरक्षण दिया कि इनको प्रोटेक्शन दो, इनका आश्रम और ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया जो पहले कभी नहीं है इतिहास में, लेकिन उनको प्रोटेक्शन दिया प्रभुपाद ने। पहला विवाह कराया वैदिक संस्कृति का, एक साल के अंदर कोई लड़का लड़की जैसे आजकल है भाई दोनों साथ रहने, बोला ऐसे अवैधिक साथ मत रहो, आइए मैं आपका विवाह कराता हूं, आप साथ रहो। वो विवाह का कल्चर उनमें 66 में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने पहला विवाह कराया। अब लड़की की सुरक्षा के लिए विवाह कराए के स्त्रियों की सुरक्षा हो, विवाह तो ऑफिशियली विवाह के नमूने से विवाह हो। अगर कोई महात्मा सन्यासी लेता है तो उसकी पत्नी की देखभाल की जवाबदारी सोसाइटी की है, वो समाज को करनी चाहिए, ये अगर वैदिक सिस्टम में चलना है। तो उन्होंने ये और कहा कि हम तो आप सबको शिक्षा दे के ब्राह्मणिकल कल्चर से ओतप्रोत करना चाहते हैं ताकि समाज आगे बढ़ सके। तो सत्संग इसके लिए अति आवश्यक है। रेगुलर सत्संग का कहीं ना कहीं प्रबंध होना चाहिए और सत्संग में सबको जो सबको लाभ हो ऐसी बात करनी चाहिए। शास्त्र को देखना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसकी होनी चाहिए। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।